Hare Krishna. महाभारत की इन कक्षाओं में युधिष्ठिर का यक्ष से संवाद, इस विषय पर चर्चा कर रहे थे पिछली बार कि कैसे यक्ष ने जब अन्य भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इत्यादि जल ग्रहण करने आए तो प्रश्नों का उत्तर दिया नहीं और कैसे फिर वो अचेत होकर गिर पड़े और फिर युधिष्ठिर आए और उन्होंने प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। तो कुछ प्रश्नों की चर्चा हम लोगों ने पिछली बार की थी, थोड़े से और महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आज करेंगे और फिर आगे की कथा को जारी रखेंगे। 100 के ऊपर प्रश्न हुए थे युधिष्ठिर से और युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर उत्तर हर एक का दिया। तो प्रश्न करते करते एक प्रश्न उन्होंने किया कि ज्ञान क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं, और युधिष्ठिर महाराज ने कहा परमात्मा के तत्व को जान लेना, परम आत्म तत्व को जान लेना, ये ज्ञान है। अर्थात इस जगत में हम जो भी ज्ञान लेते हैं वो ज्ञान हमें केवल हमारे इस जीवन को चलाने के लिए काफ़ी होता है, जीवन कैसे चलाना है, कैसे उसको अच्छा रखना है इत्यादि, लेकिन वो सच्चा ज्ञान नहीं है। क्योंकि उस ज्ञान से केवल इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जीवन में रहते हुए कैसे हम जी सकते हैं इसको पता चलता है, लेकिन अगर हम भगवान के ज्ञान को लेते हैं, परम आत्म तत्व को ग्रहण करते हैं, तो उसके द्वारा इस जगत से कैसे बाहर जाना है उसको सीख सकते हैं। जगत में बने रहना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए जीने की कला सीखना महत्वपूर्ण नहीं है, मरने की कला सीखना महत्वपूर्ण है। अर्थात कैसे इस जगत के परे जाना है वो सीखना महत्वपूर्ण है। इस जगत में बने कैसे रहना है ये सीखकर क्या लाभ है? ये तो इस प्रकार है कि मानो कोई जेल में हो और जेल में रहकर कुछ ऐसी चीजों को सीख ले जिससे जेल में थोड़ा बहुत उसको आनंद मिले, लेकिन जेल में आनंद का जितना भी मिले अंततः तो जेल में ही है, स्वतंत्र नहीं है, बद्ध है। इसीलिए सही ज्ञान वो है कि जिसके द्वारा इस जगत के बाहर जाने का मार्ग हमें मिले। केवल कैसे जीवन जीना है इसकी कला को ना सीखें, लेकिन हम सीखें कि कैसे हमें मरना है, कैसे हमें इस भौतिक अस्तित्व को समाप्त करना, वो सीखना। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने कहा ज्ञान वो है जहाँ परम तत्व या परम भगवान, परम आत्मा को जाना जाता है। फिर एक प्रश्न हुआ कृपा किसे कहते हैं, दया किसे कहते हैं। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अगर किसी के हृदय में सभी जीवों को प्रसन्न करने की इच्छा है, सभी जीवों की प्रसन्नता की इच्छा, ये सही दृष्टि में कृपा है। और इसको हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद के जीवन में। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए और ऐसे, ये थोड़ा बच्चों को चुप रहने के लिए बोलना चाहिए, अगर आपको बात करना है तो बाहर जाके, मंदिर में बैठकर बात नहीं करना प्रवचन के समय, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद जब गए तो उन्होंने सभी को प्रसन्न करने का प्रयास किया, हर जीव के लिए वे प्रसन्नता का मार्ग प्रस्तुत करना चाहते थे और वो था भक्ति का मार्ग। क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग धन कमाकर आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं जो मिलता नहीं है, कोई लोग ड्रग्स इत्यादि लेकर उसमें आनंद लेने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें भी वो आनंद नहीं मिला, कोई लोग घोर पाप का जीवन जीकर आनंद लेने का प्रयास कर रहे थे उसमें भी आनंद नहीं मिला। तो इसीलिए प्रभुपाद चाहते थे कि हर जीव आनंद का हो, आनंद की प्राप्ति करे, और इसीलिए उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, सभी जीवों को वो मार्ग दिया जिससे सच्ची प्रसन्नता, सच्चा आनंद मिल सके, और ये सच्ची कृपा है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि सच्ची कृपा ये है, सच्ची कृपा ये नहीं है कि हम किसी को कोई भौतिक चीज प्रदान कर दें, सच्ची कृपा ये नहीं है कि हम किस थोड़े लोगों के लिए कार्य करें, कृष्ण भावनामृत ये सारी मानवता के लिए है, और इसीलिए इसका प्रसार, इसका प्रचार पूरे जगत में ये सच्ची करुणा है। दरअसल कृष्ण भावनामृत का प्रचार ये करुणा का मूर्तिमान स्वरूप है। अगर कोई देखना चाहे कि करुणा का मूर्तिमान स्वरूप क्या है तो वो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार, बस। तो ये सच्ची करुणा युधिष्ठिर महाराज समझाते हैं। फिर उनसे प्रश्न किया, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कि अनंत व्याधि क्या है। व्याधि यानी रोग, अनंत यानी ऐसा रोग जो कभी समाप्त ही नहीं होता, ऐसा कौन सा रोग है जो कभी समाप्त नहीं होता। और युधिष्ठिर महाराज ने कहा लोभ, लालच। लालच या लोभ ये ऐसा रोग है, अनंत रोग है कि कभी समाप्त नहीं होता। व्यक्ति का लोभ बढ़ता जाता है, जो चीजें हमें मिली हैं उसमें आनंद न लेकर, संतुष्टि न लेकर लोभ के द्वारा हम और चीजों को पाना चाहते हैं। सुखी रहने का मार्ग ये है कि जो हमें प्राप्त हुआ भगवान की योजना से, भगवान की कृपा से, उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना। लेकिन जब ये संतुष्टि नहीं होती है, हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, लोभ को बढ़ाते हैं, तो रोगी बनते हैं। रोग का एक ही कारण है, अनंत व्याधि ऐसा रोग जो कभी समाप्त नहीं होता, वो यही है कि लोभ है। हम लोग भक्ति मार्ग में भी आ जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, जप करते हैं, मंदिर आते हैं, लोभ बना रहता है, रोग बना रहता है। किसी को लोभ रहता है धन का, किसी को लोभ होता है सत्ता का, किसी को लोभ होता है भोग का, किसी को लोभ होता है इंद्रिय तृप्ति का। तो अलग अलग भोगों में ये लोभ बढ़ता है। जैसे अगर किसी को धन का लोभ है तो वो थोड़े से धन से संतुष्ट नहीं होता। अंग्रेजी में कहावत है, इस जगत में हर एक के लिए, हर एक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत है। There is enough for everyone's need. लेकिन आगे कहा गया है There is not enough for one man's greed. इस जगत में हर एक के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक व्यक्ति के लोभ की पूर्ति करने के लिए इस जगत में पूर्ण चीजें नहीं है, जगत में नहीं है उतनी चीजें। क्यों? क्योंकि लोभ इतना बढ़ता जाता है, व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता और चाहता है और चाहता है। उसको थोड़ा बहुत मिल जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है बस इतना मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, फिर मिल जाता है, फिर संतुष्ट नहीं। और भक्ति में भी यही बना रहता है, हम जहां जिस स्थिति में हैं वहां संतुष्ट नहीं रहते। जैसे आप देखते हैं कि कभी कोई व्यक्ति किसी छोटे गांव में रहता है तो वो शहर जाना चाहता है, उसको लगता है शहर में संतुष्टि है, फिर वो शहर पहुंच जाता है तो वहां से बड़ा शहर जाना चाहता है। जैसे ज्यादातर लोग बंबई जाना चाहते हैं, भारत में बंबई में बहुत पैसा है, बंबई में संतुष्टि, बंबई के लोग अमेरिका जाना चाहते हैं क्योंकि वो लोग वहां संतुष्ट नहीं है, और अमेरिका के लोग चंद्रमा पर जाना चाहते हैं क्योंकि वो वहां संतुष्ट नहीं, कोई कहीं संतुष्ट नहीं। इसलिए जान लीजिए कि स्थिति बदलने से संतुष्टि नहीं आती है। कोई गांव छोड़कर शहर चला जाए, शहर छोड़कर अमेरिका चला जाए, अमेरिका छोड़कर चंद्रमा पर चला जाए और चंद्रमा छोड़कर पता नहीं कोई और प्लैनेट पर जाने का प्रयास करे, संतुष्टि नहीं आएगी। तो संतुष्टि स्थिति बदलने से नहीं होती है, मन को बदलने से होती है, मानसिकता को बदलने से होती है। अन्यथा व्यक्ति जगह बदल सकता है, स्थितियां बदल सकता है, स्थान बदल सकता है, अगर मानसिकता को नहीं बदलेगा तो वही मन को लेकर जाएगा। इसलिए संतुष्ट कहां से होगा, बड़ा सरल है जानना। हां, अगर आप अपना मन किसी स्थान पर छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाएं तब माना जा सकता है कि स्थान बदलने से आनंद मिलेगा, लेकिन स्थान बदलने से आनंद नहीं मिलता क्योंकि मन वही है, वही मन जो असंतुष्टि का कारण है इस स्थान में, दूसरे स्थान में भी हमारे साथ जाने वाला है, फिर आनंद कैसे मिलेगा। तो इसलिए स्थान बदलना, स्थितियां बदलना आवश्यक नहीं है, मानसिकता को बदलना चाहिए, अपने मन को, अपने विचारों को बदलना चाहिए। हमें भगवान के द्वारा दी गई हर अवस्था में संतुष्ट रहना चाहिए। और इसीलिए जो लोभ है, कभी कभी भक्तों को भक्ति में आने पर भी संतुष्ट नहीं रहने देता, प्रसन्नता नहीं करने देता, तो इस लोभ से दूर रहना चाहिए। तो इसीलिए इसको महाभारत में अनंत व्याधि, ऐसा रोग जो कभी समाप्त नहीं, जिसका अंत नहीं है, अनंत, अनंत अर्थात जिसका अंत नहीं है, सो इस रोग का, इस लोभ का कोई अंत नहीं है, कहां अंत होगा। इसीलिए देखिए, व्यक्ति पहले थोड़ा सा लेना चाहता है, फिर एक समाज को कंट्रोल करना चाहता है, फिर देश को कंट्रोल करना, देश को नियंत्रण में रखना चाहता है, और फिर देश के बाद बाकी देशों को, दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, और फिर जब थक जाता है पृथ्वी को नियंत्रण करते करते तो जल को नियंत्रण करता है, वायु को नियंत्रण करता है, वो भी थक जाता है तो दूसरे जो ग्रह हैं उनको नियंत्रण करने का प्रयास करता है, पहले कौन जाएगा चंद्रमा पर इत्यादि इत्यादि। तो हमारा ये जो लोभ हर चीज में बढ़ता जाता है, इसलिए अनंत है ये। इसलिए बहुत सुंदर उत्तर अनंत व्याधि का उन्होंने दिया। फिर उन्होंने प्रश्न किया, यक्ष ने साधु कौन है, और बहुत सुंदर उत्तर युधिष्ठिर महाराज ने दिया कि साधु वो है जो हरेक का भला चाहता है, बस वो साधु है, हर जीव का भला चाहता है। वैसे अगर हम लोग रूप गोस्वामी के द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ें तो उसमें भाव भक्त के एक लक्षण को दिया गया है कि वो सभी जीवों का अच्छा भला चाहता है, सुहृद है सभी जीवों का। और वही उत्तर यहाँ युधिष्ठिर महाराज दे रहे हैं कि किस तरह से वो व्यक्ति जो सभी का भला चाहता हो वो सच्चा साधु है। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि मोह क्या है, और युधिष्ठिर महाराज ने कहा धर्म को न जानना ये मोह है, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म को जानेगा, सच्चे धर्म को जो जान लेगा वो मोह में नहीं पड़ेगा। सच्चा धर्म क्या सिखलाता है, सच्चा धर्म वो है जो भगवद गीता में भगवान ने दिया, जो भागवत में भगवान ने दिया, वो सच्चा धर्म है, अर्थात धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो स्वयं भगवान के द्वारा निर्मित किया गया, आपके हमारे द्वारा बनाया हुआ धर्म धर्म नहीं है, भले ही हम उसको किसी भी नाम से प्रस्तुत करें लेकिन वो धर्म नहीं है। धर्म वो है जो भगवान ने बनाया। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मोह से, मोह वो है कि धर्म को ना जानना। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, आलस क्या है। ये बड़े साधारण प्रश्न लगते हैं, हमसे कोई पूछे आलस क्या है तो हम लोग कहेंगे दिन में 5 घंटा सोना, ये आलस है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा धर्म का पालन न करना ये आलस है। अगर कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता वो आलसी है। तो आलसी वो व्यक्ति नहीं है जो सदैव सोता रहता, वो तो है ही, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें सदैव सोना चाहिए, लेकिन आलस क्या है कि आलस वो है जहां हम धर्म का पालन नहीं करते। और धर्म क्या है? धर्म वो है जो हमारी स्थिति के अनुसार आचार्यों ने, शास्त्रों ने, गुरु ने हमारे लिए निर्धारित किया है, उसको धर्म कहते हैं। धर्म अपने मन से नहीं बनाया जाता, धर्म आपकी स्थिति के अनुसार दिया जाता है। हाँ, धर्म का मूल उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता, भगवान को प्राप्त करना, वो उद्देश्य है। लेकिन हर अवस्था में अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग धर्म दिए गए हैं, और ये निर्धारित कौन करता है? शास्त्र या फिर आचार्य और गुरु। तो अगर कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, इन सब के लिए धर्म निर्धारित किए गए हैं। अपनी अपनी स्थिति में रहते हुए अपने धर्म का पालन करना, ये आलस से परे जाना है। तो इसे आलस क्या है? धर्म का पालन न करना, घबराना धर्म के पालन में, डरना धर्म के पालन में। क्यों? क्योंकि अगर हम धर्म का पालन करेंगे तो भोग प्रवृत्ति से दूर जाना होगा। बहुत सारे लोग धर्म का पालन इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर धर्म का पालन करेंगे तो हमारी भोग प्रवृत्ति में बाधा आएगी, और यही कारण है वे कहते हैं वृद्धावस्था में धर्म का पालन होना चाहिए। जब आप बूढ़े हो जाओ तब धर्म का पालन करो, क्योंकि तब तक आपकी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, भोग करने की शक्ति नहीं रहेगी। तब फिर ऐसे भी आप बेकार हो जाओगे तो आप धर्म का पालन करो। तो इसलिए लोग घबराते हैं, डरते हैं धर्म के पालन से। क्यों? युवावस्था में आनंद लेना है, भोग करना है, और धर्म का पालन करने लगे तो पता चल जाएगा गलत है। इस भय से लोग पालन नहीं करते। लेकिन हमें आलसी नहीं होना, ये आलस है कि हम धर्म का पालन नहीं करें। और फिर बहुत महत्वपूर्ण दो अंतिम प्रश्नों को कहेंगे, फिर इस संवाद को आगे, संवाद के आगे क्या हुआ महाभारत की कथा फिर कहेंगे। तो उन्होंने प्रश्न किया कि इस जगत में आश्चर्य क्या है, परम आश्चर्य, और उसका बड़ा प्रसिद्ध उत्तर हम लोग कई बार इसको सुन चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर ने दिया। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषास्तावरम् इच्छन्ति किम् आश्चर्यतः परम्। युधिष्ठिर महाराज ने कहा अहनि अहनि भूतानि, रोज हम देखते हैं कि जीव, व्यक्ति गच्छन्ति जा रहा है कहां? यमालयम। यमालयम मतलब यम के स्थान में, अर्थात तो रोज व्यक्ति मर रहा है, लेकिन शेषा जो बचे हुए हैं यहां पर इस पृथ्वी पर, वो क्या करते हैं? शेषा स्थावरम इच्छन्ति, उनकी इच्छा क्या है? मैं हमेशा बना रहूं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि रोज देख रहे हैं, अहनी अहनी हर रोज देख रहे हैं, क्या जो लोग यमालय जा रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन शेषा स्थावरम इच्छन्ति, जो बचे हुए वो सोचते कि मैं मरूंगा नहीं, मैं हमेशा बना रहूं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं किम आश्चर्य अत परम, इससे ज्यादा आश्चर्य और क्या हो सकता है कि देख कर भी, पश्यन अपि न पश्यति, देख कर भी व्यक्ति नहीं सोचता, अपनी मृत्यु की तैयारी नहीं करता, इस जगत से अनासक्त नहीं होता, अंत तक आसक्ति बनी रहती है, ये सोचता है कि मैं मरूंगा नहीं, मेरे पिता मर गए, मेरे अन्य रिश्तेदार मर गए, मेरे मित्र मर गए, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। किम आश्चर्य था परम, यही तो बड़ा आश्चर्य है। अगर व्यक्ति ये जान ले कि सब मर रहे हैं, मैं भी कभी भी मर सकता हूं, तो कितना गंभीर हो जाएगा जीवन में। मान लीजिए कि आप एक ऐसे स्थान में हैं, मान लीजिए आप प्लेन में जा रहे हैं और अचानक अनाउंसमेंट होता है, क्षमा चाहते हैं, प्लेन क्रैश होने वाला है, आप सबको अंतिम बार हरे कृष्णा तो नहीं बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, अगर ऐसा अनाउंसमेंट हो जाए और उस समय आप जप कर रहे हो, कैसा जप होगा आपका? आप कैसे भगवान को पुकारोगे? तब आप नींद आएगी आपको जब में कि भगवान का नाम लेते ले तो बोले मरने वाले हैं, बोले थोड़ा देर सो लूं मैं पहले, बिल्कुल नींद नहीं आएगी कुछ नहीं, इतना तीव्रता से जप होगा हरे कृष्णा 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 हरे। हमें ये सोचना चाहिए हम कभी भी मर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। निश्वासे नहीं विश्वास कदारुद्धो भविष्यति, कोई विश्वास नहीं है कब तक रहेंगे। और ऐसी भावना में जप करना चाहिए, भगवान को पुकारना चाहिए हर क्षण, कभी भी कुछ भी हो सकता है भगवान का नाम ले लूं। नहीं तो क्या होगा अगर मृत्यु के समय नाम नहीं लिया, तो इसीलिए ये भाव होना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे बड़ा आश्चर्य है कि व्यक्ति समझ नहीं रहा कि ये जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, शाश्वत नहीं है ये जीवन, क्षण भंगुर है। दुर्लभम मानुषम देहु देहिना क्षण भंगुरः। निमि महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि ये जो शरीर है दुर्लभम मानुषम देहो, ये जो मनुष्य शरीर है बड़ा दुर्लभ है। क्यों? बहुत बहुत योनियों के बाद मिलता है, कई कई रूप कई योनियों में घूमने के बाद, 80 लाख योनियों में घूमने के बाद फिर मनुष्य जन्म मिलता है। दुर्लभम मानुषम देहो, लेकिन देहिना क्षण भंगुरः, है क्या ये देह? क्षण भंगुर, एक क्षण में समाप्त हो जाने वाला। पर हम लोग देखते हैं एक्सीडेंट्स हुए, क्या क्या नहीं हुए, लोग क्या क्या प्लान करके कहां कहां जाते हैं और फिर देहिना क्षण भंगुर। इसीलिए महाराज निमि कहते हैं तत्रापि दुर्लभम मन्ये, उससे भी दुर्लभ एक चीज है, वैकुंठ प्रिय दर्शनम, ऐसे लोगों का दर्शन जो वैकुंठपति भगवान को प्रिय हैं, अर्थात भक्तों का दर्शन। दुर्लभम मानुषम देहो देहिना क्षण भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रभुपाद उदाहरण देते थे बकरे का, बकरा घास चर रहे हैं, एक बकरे को ले जाया जाता है काटने के लिए, दूसरा बकरा घास चरता रहता है, वो ये नहीं सोचता कि अगला नंबर मेरा है मैं भी कटने वाला हूं। यही आश्चर्य है, हम सब ऐसे ही हैं। हम सब ने सोच लिया कि मैं तो नहीं मरूंगा, पूरा प्लान बना के रखा है, इतने साल तक जॉब करूंगा, उसके बाद रिटायर होऊंगा, उसके बाद यहां पर घर बनाऊंगा, पूरा प्लान रेडी है। लेकिन उस प्लान में हमने ये नहीं जोड़ा कि बीच में कहीं मर गया तो क्या होगा। कोई प्लानिंग नहीं करता है ना। आप में से कितने लोगों ने अपनी विल लिखी है बताइए? विल जानते हैं, वसीयत, कि मेरे मरने के बाद क्या हो, कितने लोगों ने लिखा? देखिए किसी ने नहीं, क्यों? पता है नहीं मरने वाले हैं। के आश्चर्य था परम, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या है। तो हम लोग सारी जब प्लानिंग करते हैं, अच्छा है प्लान करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि योजना नहीं बनाए जीवन में, तो योजना बनानी चाहिए कि क्या करेंगे, कैसे होगा, कहां घर खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन उस योजना में यह भी डालिए कि अगर बीच में कुछ हो गया तब क्या करेंगे। तो उस योजना के लिए एक ही उपाय कि सतत कृष्ण का नाम लेते रहें, बीच में कुछ हो भी गया तो भी भगवान के धाम वापस जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और फिर उसके बाद प्रश्न किया यक्ष ने कि सबसे अच्छा मार्ग क्या है। आश्चर्य है लोगों को, लेकिन एक मार्ग भी तो बताओ कि सब मार्ग कौन से मार्ग पर चलें, तो सबसे अच्छा मार्ग क्या है। और उसका भी उत्तर देते हुए और एक प्रसिद्ध श्लोक महाभारत का युधिष्ठिर महाराज कहते हैं तर्को प्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्न नैको ऋषियस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो येन गतः स पंथा। पंथा यानी पथ। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आपने पूछा कि सबसे अच्छा पथ कौन सा है, एकदम सही मार्ग कौन सा है, कौन से मार्ग को अपनाना चाहिए, तो सुनिए। वो कहते हैं तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्न। अगर कोई कहता है कि श्रुति अर्थात शास्त्र के मार्ग को अपना लेना चाहिए तो वो सही है, लेकिन उसमें बहुत सारे भ्रम हैं। तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क से कुछ प्रतिष्ठित नहीं होता। श्रुतयो विभिन्ना, और श्रुतियों में वेदों में विभिन्न बातें कही गई हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहा गया है तन्ने जति तद्दयी जति तद्दूरे तद अंतिके, भगवान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वो चलते नहीं हैं लेकिन सबसे तेज भागते हैं, तद्दूरे वो दूर हैं लेकिन सबसे निकट हैं। अब बताइए ऐसी बातों को कौन समझ सकता है? भगवान के पांव नहीं है लेकिन भागते हैं, दूर हैं लेकिन सबसे निकट के व्यक्ति हैं। तो इसलिए श्रुतयो विभिन्ना, बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं जो समझ नहीं सकते। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषि यस्य मतम प्रमाणम, और बहुत सारे ऋषि हैं जो अपने अपने मत देते हैं। जिस समय परीक्षित महाराज गंगा के तट पर आए, सुखदेव गोस्वामी आए नहीं थे, बहुत सारे ऋषि मुनि थे, वो पूछ रहे थे। परीक्षित महाराज ने सबसे पूछा कि ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है जो मरने वाला है, बताइए। तो हर कोई कुछ और बता रहा था, महाराज ये कीजिए, महाराज वो कीजिए, नहीं 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 आपको ये करना चाहिए इत्यादि इत्यादि, पश्चाताप कीजिए, आपने बड़ा घोर अपराध कर दिया, पश्चाताप कीजिए। तो नैको ऋषि से मतम प्रमाणम, एक भी ऋषि के मत दूसरे से नहीं मिलते। दरअसल ऋषि कहा ही उसे जाता है जिसका मत दूसरे से नहीं मिले, नहीं तो ऋषि कैसा। तो नैको ऋषि से मतम प्रमाणम, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अगर पथ ढूंढना है तो कहां ढूंढें? शास्त्र में इतनी अलग अलग बातें लिखी हैं, तर्क से कुछ स्थापित नहीं होता, ऋषियों के मत अलग अलग हैं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, और धर्म का तत्व गुफा में जाकर छुप गया, और वो गुफा क्या है? महाजनो येन गतः सपन्था, भक्तों का हृदय। और इसीलिए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं सबसे अच्छा पथ, बढ़िया पथ, एकदम सही मार्ग जीवन का ये है महाजनो येन गतः सपन्था। अपनी बुद्धि नहीं लगाना, अपने मन की नहीं सुनना, क्या करना है? महाजनो येन गतः सपन्था, जो महाजन है, भगवान के भक्त है। महाजन मतलब महाजन कौन है? भगवत गीता में भगवान कहते हैं महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः, महाजन वो है जिसने दैवी प्रकृति का आश्रय लिया है, भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय लिया है, भगवान की भक्ति में लगा है, भगवान को समर्पण किया है। तो ऐसे व्यक्ति को महात्मा मानना चाहिए, श्री कृष्ण कहते हैं। तो ऐसे महाजनो येन गतः स पंथा, ऐसे महाजनों ने जो पथ बता दिया उस पथ को सही पथ माना गया। अर्थात जीवन में सफलता तब आती है जब हम अपनी बुद्धि चलाना बंद करते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में कहते हैं कि आप जब किसी बड़े व्यक्ति को प्रचार करने जाइए तो जो भी वो कहें उनका सुनिए कि हाँ सब ठीक है, उसके बाद उनको कहिए कि अब ये सब आप बाहर साइड में रख दीजिए, अब जो मैं कहता हूं उसको सुनिए। तो हमें अगर सही मार्ग का पालन करना है तो हमें ये जान लेना है कि हम अपनी बुद्धि चलाना बंद कर दें, इसे समर्पण कहते हैं। कि केवल गुरु, केवल भक्त, उनके मार्ग को चलाएं। जैसे श्रीपद रामानुजाचार्य अपने सन्यासी भक्तों के साथ बैठे थे और वो भक्त उनसे पूछ रहे थे कि रामानुजाचार्य से कि आप बताइए कि कैसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, हम क्या करें, आप थोड़े समय में नहीं रहेंगे तो हमें क्या करना चाहिए। तो रामानुजाचार्य ने कहा एक ही चीज है, प्रपत्ति, समर्पण, बस भगवान को समर्पण करो, समर्पण से सब कुछ आएगा, गुरु को समर्पण करो। तो उन्होंने कहा वो तो ठीक है लेकिन और क्या करना, और क्या करना। तो कई बार रामानुजाचार्य ने समझाया, समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा एक काम करो, वो बाहर वो व्यक्ति जा रहा देखो, तो एक वहां पर एक टेलर था, एक कपड़े सिलने वाला, वो गूंगा और बहरा था, बोले उसको बुला के लाओ। तो उसको बुला के लाए और आप सब बाहर जाओ। तो सब बाहर चले गए, एक व्यक्ति देख रहे थे खड़े क्या हो रहा है। तो उन्होंने उस गूंगे और बहरे को, जिसको ना कुछ सुनाई देता था ना कुछ बोल सकता था, तो उन्होंने उसको अपने पांव की ओर इशारा किया और तुरंत उसने पूरा दंडवत प्रणाम किया, समर्पण कर दिया। और जैसे ही किया उसके शरीर में अष्ट सात्विक विकार हो गए, भाव विभोर हो गया, अब आंखों से आंसू बहने लगे। नाम तो नहीं ले सकता था, गूंगा था, लेकिन आंखों से आंसू बहने लगे, एकदम भाव में हो गया। सारे शिष्य आए, बड़े हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, इसको कैसे हो गया। रामानुजाचार्य ने कहा ये समर्पण है, केवल गुरु को समर्पण करके, इस तरह का समर्पण, प्रपत्ति, पूर्ण समर्पण, इसके द्वारा कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, यही एक मार्ग है। तो इसलिए ऐसा महाजनो ये न गतः सपंथा, हमें ऐसे भगवान के भक्तों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। इस मनुष्य शरीर को या इस जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे एक कहावत है कि एक व्यक्ति, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की शिकार की जय श्री प्रभुपाद, एक कहावत है कि एक भिखारी ने 10 महीने तक एक मटका मांगा और जब उसे मिला तो उसने उसको तोड़ दिया। तो एक कथा ऐसी है कि एक बार एक भिखारी था, उसके पास कुछ भी नहीं था, एक मटका भी नहीं था पानी पीने के लिए। तो एक कुम्भार था, उसके पास वो जाता था और उसको बोलता था मुझे एक मटका दे दो, पैसा नहीं है मेरे पास, दे दो। कुम्भार बोलता नहीं, नहीं बाद में आना। तो ऐसे करते करते 10 महीने तक वो मांगता रहा और 10 महीने के बाद कुम्भार ने एक मटका बनाया, ठीक है ये एक मटका लेके जाओ। और उसके बाद जब उसको 10 महीने बाद मटका मिला तो बड़ा खुश हो गया, अब मेरे पास मटका आ गया, आज तक मटका नहीं था, अब मटका आ गया, मैं इससे पानी पी सकूंगा, भीख मांग सकूंगा, कुछ चीजें रख सकूंगा। तो ऐसे ही प्रसन्नता में मटके को उछाला उसने, और उछाल तो दिया हवा में लेकिन पकड़ना भूल गया। 10 महीने बाद मटका मिला, समाप्त। हम सबको भी ये मटका 10 महीने बाद मिलता है, 9 महीने माँ के गर्भ में रहते हैं, 10 महीने में हम लोग बाहर आते हैं। तो ये मटका भी हम लोगों को बहुत समय बाद मिलता है, ये इसलिए बताया गया। लेकिन हम भी इस मटके के साथ क्या करते हैं, बस मटका मिल गया हम प्रसन्नता में रहते हैं, उसको उछाल देते हैं, लेकिन उसको संभालना, धारण करना भूल जाते हैं, धर्म देना भूल जाते हैं। धर्म धृ धातु से आता है जिसका अर्थ है धारण करना, तो हम उसको भूल जाते हैं, भोगों में लगा देते हैं, आनंद में लगा देते हैं, मटका फूट जाता है एक दिन, खत्म। 10 महीने की मेहनत से मटका मिला और फोड़ दिया। तो इतना कष्ट सहकर हमें ये मनुष्य शरीर मिला, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको भोग में लगाकर समाप्त कर देते हैं। तो इसलिए इसका सदुपयोग होना चाहिए। महाजनो येन गतः स पंथा। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिए, और भी कई उत्तर प्रश्न हुए, और फिर यक्ष प्रसन्न हो गए। यक्ष ने कहा तुमने जितने भी उत्तर दिए सब एकदम सही हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम इन चारों में से एक भाई को चुन सकते हो, कोई एक भाई को नाम लो, मैं उसको पुनर्जीवित कर देता हूं, बाकी भाई मरे रहेंगे। चार में से तीन ऐसे ही रहेंगे, एक कोई भी चुन लो। तो तुरंत युधिष्ठिर ने कहा नकुल को जीवित कीजिए। तो यक्ष ने प्रश्न किया क्यों नकुल? अरे भीम इतना शक्तिशाली, 10,000 हाथियों का बल है, और आप तो उतना प्रेम करते हो भीम से, और भीम ही नहीं अर्जुन, अर्जुन जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा है आप उससे भी बहुत प्रेम करते हो, तो आपने भीम और अर्जुन को छोड़कर नकुल को क्यों मांगा, बाकी क्यों नहीं, और अर्जुन को क्यों नहीं, भीम को क्यों नहीं? तो एक बहुत सुंदर श्लोक युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, धर्म एव हतो हन्ति धर्म रक्षति रक्षितः तस्मा धर्म न त्यज्यामि मान धर्म हति वधि। कहते हैं धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, कि आप पूछ रहे हैं कि मैंने नकुल को क्यों चुना, तो मैं आपको बताता हूं, जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता, धर्म एव हतो हन्ति, जो धर्म को नाश पहुंचाता है धर्म उसका नाश करता है। धर्म एव हतो हन्ति, हतो यानी जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश कर देता है, लेकिन धर्मो रक्षति रक्षितः, जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तस्मा धर्म न त्यज्यामि, तो इसीलिए मैं धर्म को कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि धर्म त्यागने से वधी मेरी मेरा नाश होगा। तो बहुत सुंदर बात वो कहते हैं कि धर्म एव हतोहन्ति, अगर हम धर्म का नाश करते हैं तो धर्म हमारा नाश कर देता है, हम धर्म की रक्षा करते हैं धर्म हमारी रक्षा करता है। तो धर्म की रक्षा कैसे हम कर सकते हैं, ये तो बड़ी विचित्र बात है, हम धर्म की रक्षा करें या धर्म हमारी रक्षा करेगा, धर्म को हमारी रक्षा करनी चाहिए, हम धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं। धर्म की रक्षा सबसे पहले हम व्यक्तिगत तौर पर कर सकते हैं और फिर व्यापक तौर पर। व्यक्तिगत अर्थात अपने जीवन में धर्म के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करके हम धर्म की रक्षा करते हैं, और फिर जब हम उस तरह से धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करते हैं तो वही धर्म के सिद्धांत हमारी रक्षा करते हैं, हमें बहुत ज्यादा ये भौतिकता में पड़ने नहीं देते, हमारी भक्ति को बनाए रखते हैं। सच्चा धर्म तो वो है जहां हम भक्ति को बनाए रखें। सच्चा धर्म किसी भौतिक चीज की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। सच्चा धर्म वो नहीं है जो हमें धन प्राप्त कराए, सच्चा धर्म वो नहीं है जो हमें कोई पद प्राप्त करा दे, सच्चा धर्म वो है, सच्चा धर्म की रक्षा धर्मो रक्षति रक्षिता वो है जहां हमारी भक्ति बनी रहे। तो अपने स्तर पर जब हम सिद्धांतों का पालन करते हैं, अर्थात जो भी नियम भक्ति के हैं उनको बड़ी कड़ाई से हम पालन करते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए दोनों माताएं समान हैं, कुंती और माद्री, और आपने जब ये कहा कि एक को चुनो, तो एक पुत्र तो मैं जीवित हूं कुंती का, तो धर्म के अनुसार मुझे दूसरी जो मां है माद्री उनके भी एक पुत्र को जीवित रखना था, इसीलिए मैंने नकुल को कहा, क्योंकि अर्जुन और भीम ये तो कुंती के पुत्र हैं लेकिन नकुल माद्री के हैं, तो इसलिए मैं एक पुत्र जीवित और वो भी एक पुत्र जीवित रहे। तो ये सुन के यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हारे चारों भाई पुनः जीवित हो जाएंगे, चिंता नहीं करना। और उस समय युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया, अभी तक तो यक्ष प्रश्न कर रहे थे, अब युधिष्ठिर महाराज ने किया, आप हैं कौन, आप यक्ष नहीं हो सकते, क्योंकि किसी यक्ष में इतनी शक्ति नहीं है कि मेरे इतने शक्तिशाली भाइयों को वो अचेत कर दे, और किसी यक्ष में इतनी शक्ति नहीं है कि वो इतने प्रश्न मुझसे कर सके, आप यक्ष नहीं है, आप कौन है, क्या आप इंद्र हैं, क्या आप कोई बहुत महान देवता हैं, आप हैं कौन। और उस समय उन्होंने अपना परिचय दिया, उन्होंने कहा कि मैं धर्मराज हूं, तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे अंश हो, और तुम ही नहीं विदुर भी मेरे अंश हैं, तो मैं धर्मराज हूं और मैं तुम्हारी केवल परीक्षा लेने आया था। देखिए जीवन में हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ही कष्ट आते हैं, लेकिन देखिए परीक्षाएं अच्छे अच्छे बड़े बड़े भक्तों के जीवन में भी होती हैं। युधिष्ठिर जिनका गुणगान स्वयं श्री कृष्ण करें, ऐसे भक्त के जीवन में भी परीक्षा होती है। और युधिष्ठिर की यही परीक्षा समाप्त नहीं हुई, जब तक युधिष्ठिर वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर गए तब तक उनकी परीक्षा हो रही थी। आप सब जानते हैं कि जिस समय युधिष्ठिर जा रहे थे उनकी परीक्षा प्रारंभ हो गई, उनके पीछे पीछे कुत्ता चल रहा था, चारों भाई द्रौपदी सब गिर चुके थे, एक एक कर गिर रहे थे। युधिष्ठिर के लिए वो भी परीक्षा थी कि क्या युधिष्ठिर उनसे आसक्त होकर वापस भागते हैं या अपने पथ पर चलते रहते हैं। युधिष्ठिर पथ पर चलते रहे, एक कुत्ता उनके पीछे चलता रहा, इंद्र ने अपना रथ भेजा युधिष्ठिर को कि आप इसमें आइए, आपको स्वर्ग लेके जाएंगे। तो युधिष्ठिर चढ़ने लगे, उसके पहले उन्होंने कुत्ते को कहा तुम चढ़ो। तो जो सारथी था उसने कहा सॉरी वीजा नहीं है इसके पास, इसको कहां ले जा रहे हैं आप, कुत्ते का क्या काम है स्वर्ग में, ये नहीं जा सकता। युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये एक कुत्ता ही है जो मेरे पीछे पीछे अभी तक चला है, इसने मेरा अनुगमन किया है, मैं इसको कैसे त्याग सकता हूं, अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो सारथी ने कहा मुझे तो ऑर्डर नहीं है, अनुमति नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे तो केवल यह हुआ था कि आपको लाना है। चलिए युधिष्ठिर महाराज ये सब छोड़िए अभी, ये क्या कुत्ते के पीछे पड़े हैं आप। युधिष्ठिर ने कहा कि ये साधारण कुत्ता नहीं हो सकता, और अगर है भी तो इसने मेरा साथ दिया है यहां तक अंत तक, अब मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं, कैसे मैं इसको यहां छोड़कर चला जाऊं स्वर्ग, अगर ये नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। वो उनकी एक परीक्षा थी, कुत्ता दरअसल वो कुत्ता नहीं था, धर्मराज स्वयं थे, वहां परीक्षा हुई। अब स्वर्ग में चले गए, क्या देखते हैं युधिष्ठिर महाराज, दुर्योधन दुशासन कर्ण ये बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठे हुए हैं स्वर्ग में, भोग कर रहे हैं, दास दासियां उनकी सेवा कर रही हैं, बड़े प्रसन्न हैं, उनके उनके चेहरे पर तेज है, शरीर एकदम सुंदर है, और वो आनंद ले रहे हैं बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठे हुए। और युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं अर्जुन कहां है, भीम कहां है, नकुल सहदेव कोई नहीं। उन्होंने कहा मुझे अपने भाइयों से मिलना, मेरे भाई कहां हैं। तो कहा गया ठीक है, एक दूत को भेजा, ले जाओ इनको भाई दिखाओ इनके कहां है। और चलते रहे ऐसे स्थान पर आए जहां बड़ी गंदी बदबू, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बड़ा कष्ट। और फिर उन्हें आवाजें सुनाई दी भीम की अर्जुन की, रक्षा कीजिए हमारी। बड़े आश्चर्य में कि अरे ये दुर्योधन ये पापी अधर्मी ये स्वर्ग में भोग कर रहा है, और ये मेरे भाई जिन्होंने धर्म का पालन किया ये नरक में है, और वो चिल्ला रहे हैं पुकार रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को बचाइए, बहुत कष्ट हो रहा है, रक्षा कीजिए हमारी। अर्जुन की आवाज आ रही है, भीम की आ रही है, नकुल सहदेव। युधिष्ठिर महाराज बड़े आश्चर्य में हो गए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा और अंदर जाना चाहता हूं मैं। दूत ने कहा नहीं बस यहीं तक आपको ले जाने की अनुमति है, अब आप वापस चलिए, आपने देख लिया सुन लिया आपके भाई कहां हैं, अब आपको वापस जाना होगा, आपका स्थान स्वर्ग में है, आप वहां भोग करेंगे, आपके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था है। युधिष्ठिर ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई जिन्होंने हर चीज में मेरा साथ दिया, मेरे कष्टों में उन्होंने साथ दिया, मेरा वनवास में अज्ञातवास में अन्य सभी दुखों में वो मेरे साथ थे, आज मैं उनको छोड़ नहीं सकता, तो अगर ये नहीं जा रहे हैं तो मैं भी यहीं रहूंगा, आप जाइए वापस। दूत ने कहा नहीं ये अनुमति नहीं है, मुझे कहा गया था कि आपको वापस लाना है बस यहां तक ले जाकर। युधिष्ठिर ने कहा नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं भी यहीं रहूंगा, ठीक है जो भी धर्म के सिद्धांत हो, मुझे नहीं पता कि किस सिद्धांत के कारण ये कर्ण ये दुर्योधन ये दुशासन ये इनको स्वर्ग का भोग मिला है और मेरे भाइयों को नरक, लेकिन जो भी हो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ये उनकी एक परीक्षा थी, ऐसा नहीं था कि अर्जुन इत्यादि नरक में थे, ये परीक्षा थी कि क्या इस समय भी उनसे कहा गया कि युधिष्ठिर महाराज आप जिन भाइयों की बात कर रहे हैं वो तो पृथ्वी पर समाप्त हो गए, आपका संबंध समाप्त हो गया पृथ्वी पर, आपके भाई थे जब तक आप पृथ्वी पर राजा थे, अब तो ना वो रहे हैं ना आप रहे हो, ये स्वर्ग है अब कैसा संबंध। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा नहीं ये मेरे भाई हैं, इन्होंने हर समय मेरा साथ दिया है, आज मेरा कर्तव्य है इनका साथ देना, ये परीक्षा थी युधिष्ठिर की। तो देखिए ऐसे भक्तों के जीवन में भी परीक्षाएं होती हैं, और जब हमारे जीवन में अगर थोड़ी बहुत परीक्षा हो जाए तो हम भक्ति से दूर जाने का प्रयास करने लगते कि ये क्या हो गया, इतने साल भक्ति की क्या लाभ है। परीक्षा युधिष्ठिर महाराज ने कभी नहीं सोचा कि अरे जीवन भर मैंने धर्म का पालन किया, मेरे भाइयों ने किया और आज ये नरक में हैं, कोई बात नहीं रहने दो, मैं तो जाता हूं स्वर्ग में क्योंकि मेरे लिए तो वहां व्यवस्था नहीं। वो परीक्षा भी पास हुए, दरअसल ना वो नरक था ना वो स्वर्ग था। तो इसीलिए जान लीजिए कि भक्त के जीवन में भी परीक्षाएं होती हैं। तो यहां धर्मराज ने कहा ये तो तुम्हारी परीक्षा थी और मैं चाहता था, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, अब मांगो कुछ मुझसे, कोई वरदान मांगो, मैं देना चाहता हूं। वैसे तो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम धर्म का पालन करते हो, धर्मराज हो, लेकिन फिर भी मांगो। युधिष्ठिर ने कहा 12 वर्ष पूरे होने आए हैं, 12 वर्षों से हम लोग वनवास में हैं, 12वां वर्ष पूरा हो रहा है, 13वां प्रारंभ होने वाला है, कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अज्ञातवास में छुप कर रह सकें, कोई पहचाने नहीं हमें। तो उस समय धर्मराज ने कहा निश्चित, चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम पृथ्वी पर कहीं भी विचरण करोगे इस 1 साल में कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, और इतना ही नहीं तुम अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदल सकोगे, ये भी मैं आशीर्वाद तुम्हें देता हूं। देखिए ये आशीर्वाद आगे काम आएगा, हम लोग अगर अभी चर्चा करेंगे तो कैसे वो आशीर्वाद काम आए। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना रूप बदल सकोगे और इस 1 साल में विराट के नगर में आराम से रहोगे, कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। और फिर धर्मराज ने कहा युधिष्ठिर ये आशीर्वाद देकर मेरे अंदर प्रसन्नता नहीं हुई, मैं तुम्हें कुछ और देना चाहता हूं। ये तुमने क्या मांग लिया मुझसे, बहुत छोटी सी चीज मांगी, मैं प्रसन्न नहीं, कुछ और मांगो, और क्या चाहिए। तो उस समय युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर बात कही और बात मानी उन्होंने, क्योंकि धर्म की वो बात कर रहे थे। जब धर्मराज आए तो धर्मराज ने कहा कि मेरा जो शरीर है ये सत्य से, शौचम से, ये तपह से, इन चीजों से बना है मेरा शरीर, अर्थात धर्म के ये सिद्धांत हैं, और इसके द्वार धर्म के द्वार हैं, व्यक्ति तपस्या करे इसके द्वारा धर्म के द्वार खुलते हैं। वो कहते हैं अहिंसा, समता, शांति और कृपा, ये द्वार हैं धर्म को प्राप्त करने के। और जब उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुम कुछ और मांगो, मैं अभी संतुष्ट नहीं हूं, तो उस समय युधिष्ठिर ने कहा कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे ये दीजिए कि मैं अपने लोभ, अपने मोह और अपने क्रोध को जीत सकूं, इन पर विजय पा सकूं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, नाश के नरक के 3 द्वार हैं, नरकस्येदम काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्माद्येतम त्रयम् त्यजेत, काम क्रोध और लोभ। और यहां युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं मैं इन तीनों पर विजय प्राप्त कर सकूं, आप इतनी मेरे ऊपर कृपा कीजिए, और साथ ही साथ मैं इन पर विजय प्राप्त कर सकूं और किन चीजों को कर सकूं। उन्होंने कहा दान कर सकूं, क्योंकि लोभ को पराजित करने के लिए दान आवश्यक है। तो उन्होंने कहा मैं दान कर सकूं, हमेशा तपस्या में लगूं और सत्यता में रहूं। अर्थात एक तरफ उन्होंने मांगा कि मैं लोभ, क्रोध और मोह इनसे परे रहूं, लेकिन इनसे परे रहने के लिए क्या करूं, दान करता रहूं, सदैव दान करने में लगा रहूं, सदैव सत्यता पर बना रहूं, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि मैं सदैव सत्यता पर बना रहूं और हमेशा तपस्या करता रहूं। तो देखिए बहुत सुंदर चीजें हैं हमारे लिए, 3 चीजों को त्यागना और 3 चीजों को करना। युधिष्ठिर महाराज ने ये वचन मांगा उनसे, ये आशीर्वाद मांगा। तो 3 चीजों को त्यागना है, क्रोध को त्यागना, लोभ को त्यागना और मोह को त्याग देना, लेकिन उसको त्यागने के लिए 3 चीजों को करना है। क्या चीजें हैं, हमें दान करना है, हमें सत्यता पर बने रहना है और हमें तपस्या करनी है। दान बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि दान से लोभ कम होता है। हर व्यक्ति को दान करना चाहिए अपनी अपनी स्थिति के अनुसार। दान का अर्थ केवल धन का दान नहीं है, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन ज्ञान का दान भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं, ये ज्ञान का दान है। हर व्यक्ति को दान करना चाहिए। दान से लोभ की प्रवृत्ति चली जाती है, व्यक्ति लोभ ही नहीं बनता, केवल अपने लिए नहीं चाहता। इसीलिए विशेष करके गृहस्थ जीवन में दान की संस्कृति की गई है कि हर गृहस्थ को अनिवार्य है कि दान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरह से वो चीजों को इकट्ठा कर रहा है उसमें लोभ बढ़ता है, उस लोभ को त्यागने के लिए उसको दान करना चाहिए। और जो अन्य वैरागी हैं उनको भी दान करना चाहिए, उनको ज्ञान का दान करना चाहिए, उनको भक्ति के ज्ञान का दान करना चाहिए। उनको लोभी नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि मुझे एक मार्ग मिल गया है, मुझे एक मुक्ति का मार्ग मिल गया, भक्ति का मार्ग मिल गया, बस। नहीं, उन्हें स्वार्थी नहीं होना है, लोभी नहीं होना, उन्हें दान करना है। तो इसीलिए दान और दूसरा तपस्या, तो तीन चीजों को त्यागना है, तीन चीजों को बढ़ाना है जीवन में। तो त्यागना तो है क्रोध को, लोभ को, मोह को, लेकिन जिनको बढ़ाना है वो है तपस्या, वो है सत्य का मार्ग, और वो है दान। तो दान अर्थात जितना हो सके जो हमें मिले उसको बढ़ाइए, उसको प्रचार कीजिए, लोगों में बांटिए, कृष्ण भावनामृत को बांटिए। जो आपके पास है वो दीजिए दूसरों को, जितना है उतना दीजिए, कोई कमी नहीं होगी। ये एक ऐसा दान है जो करने से बढ़ता है, अन्य दान करने से कुछ कम हो जाता है। प्रभुपाद एक समय कहते हैं कि एक व्यक्ति, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति, उन्होंने छू दिया किसी को, कह दिया मेरा सारा जो ज्ञान है चला गया, बस अब तो मैं बेकार हो गया। नहीं, ये भक्ति का ज्ञान ऐसा नहीं है। भक्ति का ज्ञान जितना हम बांटते हैं उतना बढ़ता है, तो इसलिए बांटना चाहिए। क्यों बढ़ता है ये? क्योंकि इसका आधार प्रेम है, कृष्ण प्रेम, और प्रेम जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। इसीलिए भक्ति का ज्ञान जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। तो ये दान, ये हर एक को करना चाहिए। और अगर हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर क्षमता नहीं है, तो भगवद गीता के 12वें अध्याय में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जो लोग कर रहे हैं उनकी मदद कीजिए। अगर आप सीधे दान नहीं कर सकते ये, तो उनकी मदद कीजिए, मंदिर बनाने में मदद कीजिए, मंदिर चलाने में मदद कीजिए, प्रचार में मदद कीजिए, जो कर सकते हैं कीजिए। तो ये सच्चा दान है। और दूसरा तपस्या, हमें इसको बढ़ाते रहना चाहिए जीवन में। अर्थात तपस्या क्या है? तपस्या का अर्थ ये नहीं है कि हिमालय में जाना, सब चीजों से दूर रहना। तपस्या का अर्थ है अपने मन को भोगों से दूर रखना। तपस्या का अर्थ है अपने आप को एक कमल की तरह बनाना, वैसा कमल जो कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ का स्पर्श नहीं करता, बहुत ऊंचा रहता है कीचड़ से। और इसीलिए भगवान के चरणों में अर्पण किया जाता है, इसीलिए भगवान के सारे अंगों की तुलना कमल से होती है, क्योंकि कमल एक ऐसा पुष्प है जो कीचड़ में रहकर भी उससे परे है। ये सच्ची तपस्या है कि हम जहां हैं, जिस स्थिति में, उसमें रहें लेकिन उससे लिप्त ना हो, उससे प्रभावित ना हो, उसमें रमण ना करें, अपने आप को दूर रखें उन चीजों से, अर्थात अपने मन को कृष्ण में लगाएं, भगवान की भक्ति में लगाएं। सच्ची तपस्या ये है कि आज मेरा मन भोगों की ओर भाग रहा है, विषयों की ओर भाग रहा है, विषय जे प्रीति हबे। आज बहुत सारे हमारी प्रीति, हमारी आसक्ति सब विषयों में है। से मत प्रीति हो के चरण तुमार, वही प्रीति आपके चरणों में। जितनी तीव्रता से आज मेरा मन एक किसी भौतिक विषय के प्रति भागता है, फिर वो चाहे धन हो, फिर वो चाहे स्त्री हो, फिर वो चाहे जन हो, वो मान प्रतिष्ठा हो, कितनी तीव्रता से मेरा मन भागता है वहां, उसको सिखलाना नहीं पड़ता। उसको समझाना, कोई ट्रेनिंग देनी नहीं पड़ती है, कोई प्रशिक्षण नहीं देना पड़ता है मन को कि देखो ये भोग है, इसको ऐसे पकड़ना है, इसकी तरफ ऐसे भागना है। मन स्वतः भागता है, जैसे गंगा गंगा सागर की ओर भागती है, गंगा को कोई मार्ग देना नहीं पड़ता, गंगा अपना मार्ग बनाते हुए चल देती है। ऐसे हमारा मन कृष्ण की ओर भागे ये हमें सीखना चाहिए, इसको तपस्या कहते हैं। ये सच्ची तपस्या है कि उन भोगों से मन को निकालकर उसी तीव्रता से कृष्ण की ओर जाना, और ये तब होगा जब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सत को अपनाएंगे और असत को त्यागेंगे। जीवन में सत और असत, भौतिक जीवन में दोनों चीजें मिलती हैं, ज्यादातर चीजें असत हैं भौतिक जीवन में, और सत क्या है? सत बहुत थोड़ी चीजें हैं इस जीवन की, इस भौतिक अस्तित्व की, बाकी सारी चीजें असत हैं, बहुत थोड़ी चीजें सत हैं। भगवान, भगवान की भक्ति और भगवान के भक्त, यही सत है। और इसको अगर हम अपना लें, इस मार्ग को अपना लें, तो जीवन सफल है। और यही युधिष्ठिर महाराज ने धर्मराज से मांगा कि मुझे बस इतना दे दीजिए, और युधिष्ठिर को उन्होंने उसको दिया कि ठीक, तुम कभी भी धर्म के मार्ग से गिरोगे नहीं और इन चीजों का पालन कर सकोगे। और फिर इतना कह के धर्मराज चले गए। और अब 13वां वर्ष प्रारंभ होने वाला है, अब वो कैसे जाएंगे, किस रूप में जाएंगे, क्या नाम लेंगे, क्या कार्य करेंगे, इस सब का वर्णन अगले सोमवार को होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कुछ पूछना चाहते